नमस्कार भारत, तारीख 31 मई दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अफ्रीकी देश चाड में हजारों लोगों की हत्या के दोषी पूर्व राष्ट्रपति को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। आरक्षण की मांग को लेकर 5 तारीख से होने वाले आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कसी कमर, 7 जिलों में धारा 144 लागू। आंदोलन के नेता यशपाल मलिक बोले,
मुख्यमंत्री जी ने मांगे मानी थी केस वापसी की, जिन बच्चों की डेथ हो गई उन कंपनसेशन की, ये सब उन मुद्दों को लेके आंदोलन है। ये रिजर्वेशन तो अभी कोर्ट में है, तो कोर्ट के अगेंस्ट कोई आंदोलन नहीं।
भारत सुकून की तलाश में आए पाकिस्तान से हिंदुओं के हालात क्यों नहीं बदलते, खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। चाड के पूर्व राष्ट्रपति हिसेन हाबरे को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए सेनेगल की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर अपने शासनकाल के दौरान 40,000 लोगों का कत्ल करवाने का आरोप है। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दुनिया भर के तमाम तानाशाहों को इस फैसले से कड़ा संदेश जाएगा। ब्राजील की नवगठित सरकार में मंत्री फैबियानो सिल्वेरिया ने इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार के गठन के बाद इस्तीफा देने वाले वो दूसरे मंत्री हैं। सिल्वेरिया भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन एक ऑडियो क्लिप के आने के बाद उन्होंने पद से हटने का फैसला किया। इस क्लिप में वो एक तेल कंपनी पर वित्तीय अनियमितता के मामले की जाँच रोकने की कोशिश करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह इसी तरह की एक और क्लिप के आने के बाद योजना मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सीनेट में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति पद से हट गई थी। तब नए अंतरिम राष्ट्रपति मिशेल टेमर की अध्यक्षता में नई सरकार का गठन हुआ था। फलूजा शहर में दोबारा कब्जे के लिए कोशिश कर रही इराक की फौज और इस्लामिक स्टेट के बीच जोरदार लड़ाई जारी है। इराक की फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि सेना के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक वो आम नागरिकों की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते। साथ ही आशंका इस बात की भी है कि इस्लामिक स्टेट ने कई जगहों पर बम छुपा कर रखे हैं। इराकी सेना के एक कमांडर मेजर दिया थमीर के मुताबिक उनकी सेना फलूजा में घुसने के लिए तैयार है। हमारी सेना आईएस से निपटने के लिए तैयार है। एलीट फोर्स और आतंकी निरोधक सेना मिलकर फलूजा में घुसकर इस्लामिक स्टेट को उखाड़ फेंकने के लिए हम उच्च अधिकारियों से आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये थे इराकी फौज के एक कमांडर थिया थमीर के शब्द। इलाके में मौजूद राहत कर्मियों के मुताबिक शहर में करीब 50,000 आम लोगों के फंसे होने की आशंका है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस ने तमाम मजदूर संघों की हड़ताल से वहां यातायात की बहुत बुरी हालत हो गई है। ये संघ सरकार के प्रस्तावित श्रम सुधार कानून का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को रेलवे कर्मचारी हड़ताल शुरू कर रहे हैं, तो वहीं फ्रांस में मेट्रो रेल के कर्मचारी भी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर रहे हैं। एयर फ्रांस के पायलट भी अपनी तनख्वाह को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं। फ्रांस में 10 जून से यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। ऐसे में हड़ताल अगर जारी रहती है तो इस आयोजन पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। मैक्सिको के फुटबॉलर एलन पुलिदो को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। पुलिदो को उनके घर के पास से कल कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी अभी आपने प्रभात पांडे से सुना, अफ्रीकी देश चाड के पूर्व राष्ट्रपति हिसेन हाबरे को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। सेनेगल की राजधानी डकार में अदालत ने यह फैसला सुनाया। हाबरे को अपने 8 साल के शासनकाल के दौरान हजारों लोगों की हत्या करवाने का दोषी पाया गया। मारे गए लोगों के परिवार वालों ने फैसले को ऐतिहासिक कहा। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
जैसे ही हिसेन हाबरे को जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई, कोर्ट में मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। हाबरे 1982 से 1990 तक चाड के शासक रहे। जज ने इस दौरान उन्हें बलात्कार, यौन शोषण और हजारों लोगों की हत्या करवाने का दोषी करार दिया। मारे गए लोगों के परिवार वालों ने एक दूसरे के गले लगकर उन्हें बधाइयां दीं और फैसले पर संतोष जताया। सेनेगल में पहली बार अफ्रीकी यूनियन समर्थित एक अदालत ने किसी पूर्व शासक के खिलाफ इस तरह का फैसला सुनाया। पीड़ितों की वकील जैकलीन माउदेनिया ने कहा, पूरे अफ्रीका में इस फैसले से बेहद खुशी है क्योंकि हमने पूरे विश्व में और ख़ास तौर से चाड में संदेश दिया कि तानाशाहों का क्या अंजाम होता है। हर तरफ खुशी है, उत्साह है। पीड़ितों की वकील जैकलीन माउदेनिया के शब्द। फैसला सुनने के बाद हाबरे शांत रहे। कोर्ट से बाहर निकलते समय अपने चंद समर्थकों की ओर देखकर उन्होंने हाथ हिलाया। अदालत में मौजूद लोगों ने कहा, हम फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। हाबरे को उनके किए की सजा मिली। ये चाड और अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये अफ्रीका के दूसरे तानाशाहों के लिए सबक है जो अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनका अंजाम भी यही होने वाला है। ये थे अपनी खुशी बयां करते लोग। हाबरे ने पूरी सुनवाई के दौरान अदालत की वैधता पर ही सवाल उठाए और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्हें अमरीका का समर्थन हासिल था। उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
अफ्रीकी देश चाड के पूर्व राष्ट्रपति को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। हरियाणा में आरक्षण आंदोलन की आहट से सरकार के माथे पर चिंता एक बार फिर से घिरने लगी है। आरक्षण की मांग पर 5 जून से जाटों के फिर से आंदोलन करने की घोषणा को देखते हुए सरकार ने राज्य के 7 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में अदालत के कई फैसलों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। सरकार ने अपने स्तर से इसे काबू में करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। उधर जाट नेताओं ने भरोसा दिया है कि इस बार आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। निखिल रंजन की रिपोर्ट।
जाट नेताओं ने 5 जून से राज्य में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आरक्षण का मसला तो फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन जाट नेताओं के पास मांगों की एक पूरी फहरिस्त है जिसे वो मुख्यमंत्री का वादा बता रहे हैं। जाट संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि इस बार प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा।
ये कोर्ट के लिए नहीं है, ये ना रिजर्वेशन के लिए है। ये तो जो 22 फरवरी को आंदोलन स्थगित करते टाइम मुख्यमंत्री जी ने मांगे मानी थी, केस वापसी की, जिन बच्चों की डेथ हो गई उनकी को कंपनसेशन की, जिनको घायल है उनको कंपनसेशन की, ये सब उन मुद्दों को लेके आंदोलन है। ये रिजर्वेशन तो अभी कोर्ट में है, तो कोर्ट के अगेंस्ट कोई आंदोलन नहीं। ज्यादातर धरने गांव में रखे गए हैं जिससे कि शांति रहे और दूसरी जातियों के लोगों को भी साथ लेकर आंदोलन में भाग ले और कोई हिंसा हो, कोई बीच का आदमी बीच में न घुस पाए।
उधर सरकार ने आंदोलन की आहट सुनते ही मुनक नहर पर अर्धसैनिक बलों का पहरा बिठा दिया है। पिछली बार इसी नहर पर आंदोलनकारियों ने घेरा डालकर इसका पानी आगे जाने से रोक दिया था। सुरक्षा बलों की 10 कंपनियां बुला ली गई हैं और जरूरत पड़ने पर सेना को भी बुलाने की तैयारी है। जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लिखित आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। मोबाइल और इंटरनेट पर भी रोक लगाई जा सकती है। सरकार का दावा है कि इस बार स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर,
स्थिति को बनाए रखने के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब हमने मौजूद रखी है। मैं मानकर चलता हूं कि इस प्रकार की कोई बात इस बार नहीं होगी।
जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर बीते कुछ दिनों में हरियाणा सरकार की मुस्तैदी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसका कारण पिछले आंदोलन में बिगड़े हालात के साथ ही लोगों के मन में उठने वाली आशंकाएं भी हैं। स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा बताते हैं कि कई जगहों पर अभी से ही तनाव की स्थिति बन रही है।
पिछले 2-3 दिन में एक हाईकोर्ट में जाट आरक्षण के एक स्टे लग गया, उसके बाद जो पहले से जाट आरक्षण के संबंध में एक कॉल दिया हुआ था वो ज्यादा गंभीर बन गया। इसके रहते हुए पुलिस ने यशपाल मलिक जो जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सहित 125 लोगों पे सेडिशन के चार्जेस लगा के उन पे केस रजिस्टर कर लिया है। और कई सारी कंपनीज को रोहतक और वो जो सारे इलाके रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, जहाँ पे पहले आरक्षण का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, वहाँ पे कई सारी कंपनीज को बुला लिया है। अभी स्थिति काफी तनावपूर्ण है और इसका अचानक ही जो हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद ये सरकार ऐसा भाप रही है कि लोगों में शंका हो सकती है। जो जाट आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं या आम जाट है, वो बात भी कर रहा है कि सरकार ने शायद गंभीरता से इस बात को नहीं लिया तो हाईकोर्ट में वो अच्छी तरह पेश नहीं कर पाए इस मामले को। हालांकि आंदोलनकारी खुले तौर पर ये नहीं कह रहे, लेकिन इस आशंका के रहते हुए सरकार काफी चिंतित है और इसी वजह से वो तैयारी अब ज्यादा गंभीरता से कर रही है।
पिछली बार के आंदोलन में राज्य के कई इलाके प्रदर्शनकारियों के हाथ में बंधक बन गए थे और सरकार बस देखती रह गई। पुलिस की भूमिका पर गंभीर आरोप इनकी जांच करने वाली कमेटी ने लगाए हैं और इसके बाद कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। सरकार की मुस्तैदी शायद इस बार स्थिति को नियंत्रण से बाहर न जाने दे।
तो 5 जून से जाटों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है और हरियाणा के 7 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मुश्किल हालातों के बारे में अक्सर समाचार आते हैं, खबरें सुनाई देती हैं। बहुत से हिंदू परिवारों ने वहां से आकर हिंदुस्तान यानी कि भारत में शरण ली है। भारत सरकार ने उन्हें यहां सम्मान से रहने के लिए सारी सुविधाएं देने का वादा भी किया, लेकिन कई लोग जब यहां पर आए तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सुहैल हलीम की रिपोर्ट सुनिए जो कि इन्हीं लोगों की समस्या पर है।
गुरु जय श्री राम।
गुलबदन की हर सुबह का आगाज तो भजन कीर्तन से होता है, लेकिन बाकी दिन उस बेहतर जिंदगी के इंतजार में गुजरता है जिसका ख्वाब लेकर वो हिंदुस्तान आए थे। उनका आबाई घर रहीम यार खान में है, जहां वो कहते हैं कि वो घुटन महसूस करते थे। यहां मजहब तो है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं।
ये इंडिया में आ रहे हूँ, आपका सुख मिलेगा, हिंदू धर्म मिलेगा, नौकरी मिलेगी, को बच्चे पढ़ाई करेंगे। 6 महीने हो गए हमारे साथ जगह ही नहीं मिलती, ये फिर कहाँ पे हूँ।
दुनिया के किसी देश में हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा तो उसके लिए तो एक ही जगह बची है, वो वही चला आएगा।
लेकिन ये लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ आते हैं, इन्हें दोबारा बसाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं।
गवर्नमेंट को पता भी है ये 64 पासपोर्ट मेरा है, पता भी है ये आया है, ये कहाँ खाएंगे। 64 घर जो आया आदमी आया है, इसको मैं कुछ पेट का को मदद देऊं, इसको पैसे का रोटी का को मदद देऊं, आया को एक फुलका ही नहीं दिया।
लेकिन बीजेपी इस इल्जाम को मुस्तरद करती है कि पाकिस्तान से यहाँ आने वाले हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
हम लोग ने हमेशा उनकी चिंता करी है, क्योंकि वो उनकी चिंता भारत नहीं करेगा तो कौन सा मुल्क कर सकता है। थोड़ा सा इंतज़ार करना है, एक दफ़े सिटीजनशिप एक्ट हम पार्लियामेंट से पास कर देंगे, उसके प्रावधान ऐसे हैं जिसमें सुविधा ही सुविधा उनको मिलेगी।
बच्चों को स्कूल में आसानी से दाखिले नहीं मिलते, शनाख्ती कार्ड के बगैर बैंक में खाते नहीं खुल पाते।
स्कूल बच्चे जाते हैं भाई अपना प्रूफ ले आओ। अरे भाई हमारा प्रूफ तो बनाते नहीं, हम कहाँ से ले आए। बच्चे बच्चे कहते हैं अरे वापस चलो, हमारे को रोटी वहाँ पर रोटी तो सूखी मिलती थी।
लेकिन जिंदगी कब रुकती है, इन्हीं हालात में सागर अपने सफर का आगाज कर रहे हैं। हो सकता है कि वक्त के साथ इन लोगों की जिंदगी पटरी पर आ जाए, लेकिन फिलहाल वो फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जहां से कोई रेल नहीं गुजरती।
ये सुहैल हलीम की रिपोर्ट थी और मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं जुबैर अहमद साहब, सुप्रभात।
नमस्कार।
भारत, ये जो हिंदुस्तानी, भारत में जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, कहाँ पर आबाद हैं, इनकी आवाज़ें हम सुन रहे थे, और ये पाकिस्तान के किन इलाकों से आए हुए।
देखिए, ये जो इनमें से जो अक्सरियत है वो सिंध प्रांत से आए हुए हैं, और मैं भी इनके खेमे में गया था। दिल्ली में इनके 3 खेमे लगे हुए, जहांगीरपुरी में जहां मैं गया था वहां कम से कम 250 ऐसे लोग हैं जो सिंध प्रांत से आए हुए हैं। तो उनकी जो भारी अक्सरियत है वो सिंध प्रांत से आई है, लेकिन कुछ दूसरे पाकिस्तान के जो राज्य हैं वहां से भी आए हुए हैं।
तो आप भी पाकिस्तान से आए, हिंदुओं के जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर गए थे, वहाँ आपने जो उनसे जब रابطہ कायम किया, जब आप उनसे मिले, तो उन्होंने अपनी तकलीफ़ों के बारे में क्या बताया? क्या ये वही तकलीफ़ें हैं जो हम सुहेल हलीम की रिपोर्ट में सुन रहे थे?
तकरीबन वही हैं। उनका ये कहना था कि वहाँ पर उनको मज़हबी आज़ादी नहीं थी, वहाँ पर जब उनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे उनको कलमा पढ़ाने की ज़ोर ज़बरदस्ती किया करते थे, फिर वो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ भी होती थी वो जो गाँव में। उन्होंने ये भी हमें बताया कि सबसे बड़ी समस्या उनकी सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी और शिक्षा। तो वो जितने भी वहाँ लोग हैं तकरीबन वो अनपढ़ हैं, वो अपने नाम वो मुश्किल लिख सकते हैं, तो उनको पढ़ाई के लिए कोई सरकार ने वहाँ पर कुछ साधन नहीं किया था। स्कूल जब जाते थे तो उनका ये कहना था कि उनको वहाँ पर कुरान और कलमा पढ़ाने की ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे, वो अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तब यहाँ जब आए, अक्सर लोगों ने मुझे ये बताया कि वो अपने हिंदू धर्म की शिक्षा हासिल करने आए हैं, उन्हें नहीं पता बहुत सारे जो रस्म रिवाज हैं वो उनको नहीं पता है। तो जब यहाँ आए,
त्यौहार पर्व क्या होते हैं?
त्यौहार पर्व तो वो करते हैं लेकिन उसके पीछे उसकी क्या बैकग्राउंड है उनको नहीं पता।
तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें जो है वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है, और तो ये जो कितनी बड़ी समस्या है, और वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर भारत नागरिकता नहीं देता।
इनकी समस्या ये है, एक तरह से कहने लीगल समस्या है कि भाई शहरियत नहीं मिली। मैंने RTI फाइल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, तो हमें उसमें जो आंकड़े मिले भारत सरकार ने जो हमें दिए, ये पिछले साल सितंबर की बात है, तो उस वक्त तक 2011 से उस वक्त तक 2014 सितंबर तक सिर्फ 1403 ऐसे हिंदू नागरिक हैं पाकिस्तान से आए हुए जिनको भारतीय शहरियत मिली थी, लेकिन अफगानिस्तान से जो आए उसी पीरियड में जो अफगानिस्तान से लोग आए थे उनको उससे ज़्यादा अफगानियों को शहरियत मिली थी। और इस 2011 से इन लोगों ने अप्लाई किया, वो सारे जो सुहेल हलीम की रिपोर्ट में भी आवाज़ें हमने सुनी, इन लोगों ने शहरियत के लिए अप्लाई किया हुआ 2011 से, उनको अभी तक शहरियत नहीं मिली। तो एक बड़ी समस्या उनकी ये है। दूसरी जो उससे भी जो रोज़मर्रा की उनकी जो समस्या है, एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है, वहाँ कोई पूछने नहीं जाता उनको, वहाँ पर जो लोकल MLA MP कोई भी नहीं जाता वहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के, वहाँ उनको कोई पूछने नहीं
मतलब
जाता।
ये कह सकते हैं कि वहाँ तो ये सोच के आ जाते हैं कि भाई हिंदू हैं और यहाँ भारत
अपना देश, वो कहते भी अपना देश
अपने देश में आ गए, और यहाँ पर भी
मायूसी है, उनको बहुत मायूसी है, बहुत नाराज़ है वो लोग। वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से नाराज़गी और गुस्से में कहते हैं, लेकिन उनको पता है वहाँ जाना इतना आसान,
जाएँ तो जाएँ कहाँ,
जाएँ तो जाएँ।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अहमद साहब।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने मानव तस्करी रोकथाम संरक्षण और पुनर्वास मसौदा विधेयक 2016 जारी कर दिया है। इस नए विधेयक का उद्देश्य संबंधित कानूनों को समाहित करके मानव तस्करी की रोकथाम करना और तस्करों को कठोर सजा दिलाना व पीड़ितों को संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना है। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैयार किया गया है और लंबे समय से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। कानून के अभाव में फिलहाल IPC की धारा 370 को ही संशोधित करके काम चलाया जा रहा था। निखिल रंजन ने मानव तस्करी पर लोगों और सरकार को जागरूक करने के लिए लंबे समय से काम कर रहे संगठन शक्ति वाहिनी के प्रमुख ऋषिकांत से पूछा इस विधेयक की खास बातें क्या हैं।
हमारे पास IPC के सेक्शन थे 370 जो निर्भया कांड के बाद, जिसमें डिफाइन किया था कि कोई अगर प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज कराता है किसी को तो उसको इतना सजा है, ये सारी डिफाइन हुआ था। पर ये पहली बार है जब भारत सरकार ने इस तरह की एक्ट लेके आया, और ये मोटा मोटी देखने से लग रहा है कि ये बहुत अच्छा कानून आएगा और ये बहुत सख्त कानून आएगा, और ये क्लियर सिग्नल है कि जो इस तरह के गलत काम या गलत हरकतों में इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग में, उनके लिए सजा का प्रोविजंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। इसके साथ साथ जो 370 या उससे पहले जो IPC के सेक्शंस थे उनकी खामियां को देखते हुए इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया है। ये एक एडिशनल जो पर्टेनिंग टू ट्रैफिकिंग विच डजंट फाइंड एग्जिस्टिंग लॉ में नहीं था, वो पूरा डिफाइंड कर दिया गया है। क्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, ये भी डिफाइन किया गया है। इसके साथ साथ इसमें क्लैरिटी डिफाइन किया गया है कि मिसिंग चिल्ड्रेन अगर है तो खोया पाया वेब पोर्टल में जाके कैसे आप मिसिंग चिल्ड्रेन का डेटा दे सकते हैं। चाइल्ड लाइन का पूरा डिफाइन कर दिया गया है कि चाइल्ड लाइन का रोल क्या रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सेक्शन 370 से लेके ऑफ आईपीसी 1860 पीनल प्रोविजंस किया गया है कि अगर कोई भी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा या विटनेस की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा तो वो पीनल प्रोविजंस में आ जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ नार्कोटिक ड्रग्स और सब्सटेंसेस जो यूज करते थे अल्कोहल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग। कई बार ऐसे हम लोगों ने केसेस देखा है खासकर रेड लाइट एरिया में, लड़कियों को माइनर लड़कियों को हार्मोनल इंजेक्शन देके उनकी बॉडी को ग्रो कराते थे। वो सारी चीजें सेक्शंस पीनल प्रोविजंस में अब आ जाएंगी। प्लेसमेंट एजेंसी भी अब रजिस्टर होंगे। ये एक्ट जो है रिहैबिलिटेशन की भी चर्चा कर रहा है, स्पीडी ट्रायल की चर्चा किया है इन लोगों ने।
इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है?
बहुत भयंकर समस्या है। हर दिन हजारों बच्चे मिसिंग है पूरे इंडिया में। दिल्ली को देख लीजिए, मैक्सिमम केसेस, दिल्ली एक हाई डेस्टिनेशन और ट्रांजिट एरिया है। झारखंड से गांव-गांव से लड़कियां गायब है, पश्चिम बंगाल से वो सारे के सारे दिल्ली में आती है। बहुत ही हीनियस क्राइम है।
अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स का कैसा रवैया रहा है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एक्ट लेके आया प्लेसमेंट एजेंसी डोमेस्टिक, वो काफी स्ट्रांग एक्ट है। झारखंड ने अभी स्ट्रांगनेस दिखाई है, जहां पर झारखंड में ड्राफ्ट एक्ट बन चुका है, पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी ड्राफ्ट एक्ट आ गया है, दिल्ली में काफी कमी है। दिल्ली सरकार को ये बार बार कह रहे हैं कि हम प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट को लाएंगे, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसके लिए कई मीटिंग्स भी हो गए हैं, बट अभी तक वो ड्राफ्ट एक्ट पब्लिक को नहीं दिया गया है।
शक्ति वाहिनी संगठन के प्रमुख ऋषिकांत बता रहे थे कि भारत सरकार ने जो मानव तस्करी रोकथाम संरक्षण और पुनर्वास मसौदा विधेयक 2016 का जो विधेयक का मसौदा जारी किया है उसमें क्या क्या प्रावधान है। कई बार विवादों में घिर चुके एआईबी ने इस बार लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक बनाकर अपने लिए आलोचनाओं को न्योता दिया है। फिल्मी दुनिया के साथ ही बहुत सारे लोग इसे बुरा बता रहे हैं। दरअसल ये एक वीडियो है जिसमें कि तन्मय जो हैं वो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। मुंबई पुलिस ने इस वीडियो को हटाने के लिए गूगल से संपर्क किया है। मशहूर शायर जावेद अख्तर ने भी नाराजगी जताई है। निखिल रंजन ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा,
मैंने देखा कि क्या ही बेहुदा और बदतमीजाना है, और अफसोस की बात है कि उसमें कोई ह्यूमर भी नहीं है। और जिसने भी देखा है, मैं आपको बताऊं, गारंटी बता रहा हूं, उसको एक बहुत ही गंदगी का एहसास हुआ और बहुत गुस्सा ही आया है। मैं ये सोचता हूं कि ये लोग करते क्या है, ये कौन है, तन्मय है कौन, ये कि ये इस तरह की बात बड़े लोगों पे का नाम लेके इस तरह की बातें कर देते हैं तो इनको मुफ्त में शोहरत मिल जाए। तो बेहतर क्या है कि आप ऐसे लोगों को जब ये बदतमीजी करें तो इन्हें इग्नोर इसलिए करना चाहिए कि ये करते ही इसलिए है कि इनको चीप फेम मिल जाए, शोहरत मिल। तो आप लता मंगेशकर जैसी रिस्पेक्टेबल इंसान जिनके हिंदुस्तान में हर आदमी मोहब्बत करता है, इज्जत करता है उनकी, उनके बारे में, सचिन जो इतना बड़ा आइकॉन है उसके बारे में आप कोई बेहुदा बात कर, अच्छा चलिए आपने कोई जोक किया हो जो बड़ा फनी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप बदतमीजी कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, ये कौन सा ह्यूमर है भाई? हमें भी थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसमें ह्यूमर हमें तो कुछ दिखा नहीं, ये सिवाय बदतमीजी के और बैड टेस्ट के मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में सोच रहा हूं कि इस आदमी के बारे में ज्यादा बात करना भी इसे फायदा पहुंचाना है, इसलिए कि यही तो चाहता है कि उसको शोहरत मिल जाए।
इस तरह की जब भी कोई चीज सामने आती है तो एक दलील ये दी जाती है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए या बंद कर दीजिए, ये दलील कितनी जायज मानते हैं आप?
नहीं, वो ठीक है, एक हद तक वो भी सही है, लेकिन आप के भाई आपको जो चीजें नहीं पसंद आते, मगर इसकी आड़ में आप जो हमारे रिस्पेक्टेबल लोग हैं उन आप उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आपको पूरा राइट है इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जनतंत्र में आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप कहिए कि साहब आपको सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट खेलने का अंदाज नहीं पसंद है, लता मंगेशकर का गाने कोई अच्छे गाए नहीं आज तक लता मंगेशकर, आप दोचाई कह लीजिए, लेकिन आप बेहुदा बातें करें, बदतमीजी की बात करें, ये बात तो ठीक नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी को भी क्रिटिसाइज कीजिए हिंदुस्तान में, आपको राइट है, आपको ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब जो है इंडिसेंसी और ऑब्सिनिटी वल्गरिटी क्रूडिटी के खिलाफ भी हमारे मुल्क में लॉ है।
पुलिस ने खासतौर से कोशिश की है कि वो वीडियो हटाया जाए।
वो वीडियो इसलिए हटाना जरूरी है कि वो हर हिंदुस्तानी बुरा लगे, अच्छा नहीं लग सकता। और ये जो तन्मय है, जो भी आदमी है ये मतलब मुझे उसके ऊपर क्या बताऊं मैं, मतलब जो एक घिन का एहसास होता है कि कौन लोग हैं, मुझे घिन आती है कि ये ह्यूमर है, इसका मतलब ये जानते ही नहीं कि ह्यूमर क्या चीज है, ये ह्यूमर नहीं है।
ये थे जावेद अख्तर, जो कि काफी नाराज हैं उस वीडियो को देखने के बाद जिसमें कि तन्मय ने लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाया है। यहीं पर अब अखबारों की चर्चा कर लेते हैं। प्रभात पांडे, सारे अखबार आपने पढ़ लिए, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, ये तो जो खबर अभी हमने सुनी जावेद अख्तर जिस पर गुस्सा व्यक्त कर रहे थे, वो खबर तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है कि AIB वीडियो को लेकर तन्मय भट्ट जो हंसी के बादशाह समझे जाते हैं वो मुश्किल में आ गए हैं। जावेद अख्तर ने तो BBC से बातचीत में गुस्सा व्यक्त किया। इसके अलावा अनुपम खेर से लेकर रजा मुराद और तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की है। वहीं एक छोटा सा सेक्शन ये भी है सोशल मीडिया पर अखबार में छापा है कि इनके समर्थन में है। हाँ। और कह रहे हैं कि ये वीडियो भले ही ह्यूमरस ना हो लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के तहत इस पर हमला नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा और कौन सी?
इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर प्रमुखता से छापी कि जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को हरियाणा सरकार ने हालांकि सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अखबार के मुताबिक इस रिपोर्ट में पुलिस और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को इस समस्या से निपटने में विफल ठहराया गया है। जो बदसलूकी की खबरें आई थी महिलाओं के साथ उसको लेकर जो है वो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि हथियारों के डीलर संजय भंडारी के सौदों की छानबीन के दौरान आयकर विभाग को उनके और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बीच कथित संबंधों का पता चला है। अखबार लिखता है कि भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच जो ईमेल एक्सचेंज हुए हैं उसमें रॉबर्ट वाड्रा के लंदन में एक घर पर मालिकाना हक होने का संकेत मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर भी छापी है कि दिल्ली में ओला कैब ड्राइवर को 6 अफ्रीकी नागरिकों ने उसकी जमकर पिटाई की और इस संबंध में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उस ओला कैब ड्राइवर ने टैक्सी में बिठाने से उनको इनकार कर दिया था। इसके अलावा एक दैनिक भास्कर में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो आप देख रहे हैं। दिल्ली में पिछले दिनों एक जो निजी विमान ने
गिरा था
आपा क्रैश लैंडिंग की थी, वो विमान पिछले कुछ दिनों से वहीं पर था, उसको उठाया नहीं गया था। उस क्षतिग्रस्त विमान के साथ सेल्फी खिंचाने की होड़ लगी हुई थी जो स्थानीय नागरिक हैं।
ये दैनिक भास्कर ने छापा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे। और अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इंग्लैंड ने चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को कल खेल के चौथे ही दिन 9 विकेट से अपने नाम किया और श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी बना ली। इंग्लैंड के सामने दूसरी पारी में जीत के लिए 79 रनों का लक्ष्य था जो उसने कप्तान एलिस्टेयर कुक के नाबाद 47 और निक कॉम्पटन के नाबाद 22 रनों के मदद से केवल 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उधर इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत की साइना नेहवाल 8वीं वरीयता के साथ कोर्ट पर उतरेगी जहां पहले दौर में उनका सामना चीन ताइपे की पाईयू पो से होगा। उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल होने वाले मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए। वैसे कल होने वाले मुकाबलों में शीर्ष वरीयता हासिल अमरीका की सेरेना विलियम्स का सामना 18वीं वरीयता हासिल यूक्रेन की एलिना स्वितलोना से होना था जबकि 4थी वरीयता के साथ खेल रही उनकी बहन वीनस विलियम्स 8वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड की टिमिया बैक्सनियस्की का सामना करने वाली थी। पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच, 14वीं वरीयता हासिल स्पेन के रॉबर्टो बस्तिता अगेट से 2-2 हाथ करने वाले थे। अब ये सभी मुकाबले आज खेले जाएंगे। इनके अलावा महिला युगल वर्ग में हारने वाली भारत की सानिया मिर्जा आज मिश्रित युगल में क्रोएशिया के इवान डोडिंग के साथ खेलते हुए दूसरे दौर में फ्रांस की एलिजा कॉर्नेट और जोनाथन आइसेरिक का सामना करेंगी।
और अब कार्यक्रम में वक्त है मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनने का।
BBC समाचार। चाट के पूर्व राष्ट्रपति हिसेन हाबरे को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए सेनेगल की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ब्राजील की नवगठित सरकार में मंत्री फेवियानो सिल्वेरिया ने इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार के गठन के बाद इस्तीफा देने वाले वो दूसरे मंत्री हैं। इराक के फलूजा शहर में दोबारा कब्जे के लिए कोशिश कर रही इराक की फौज और इस्लामिक स्टेट के बीच जोरदार लड़ाई जारी है। शहर में 50,000 आम नागरिकों के फंसे होने की आशंका है। फ्रांस में तमाम मजदूर संघों की हड़ताल से वहां यातायात की बहुत बुरी हालत हो गई है। ये संघ सरकार के प्रस्तावित श्रम सुधार कानून का विरोध कर रहे हैं। मेक्सिको के फुटबॉलर एलन पुलिदो को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। पुलिदो को कल उनके घर के पास से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान एलिस्टर कुक सबसे कम उम्र में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।